نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، جو افضل ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں افضل نہیں ہوں. یہ نہیں کہا کہ جو افضل ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میں افضل نہیں ہوں. ایک ہے زبان سے کہنا کہ میں افضل نہیں ہوں، میں اب سب سے کم درجے کا ہوں، علم بھی میرا آپ سب سے کم درجے کا ہے، عمل بھی میرا آپ سب سے کم درجے کا ہے، تقوی بھی میرا آپ سب سے کم درجے کا ہے، ذہانت بھی میری آپ سب سے کم درجے کی ہے. افضل آپ لوگ ہیں مجھ سے، لیکن دل میں یہ سوچ رہا ہو کہ نہیں میں ہی افضل ہوں، لیکن بطور توازو کے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، تو یہ توازو نہیں ہے. اس توازو کا کوئی اعتبار نہیں جو زبان پر ہو مگر دل میں نہ ہو. توازو دل میں ہو، اور دل میں توازو اور ہمبلنس اور ہیوملٹی کے ہونے کی وجہ سے اپنے دل میں جو بات ہے اس کی حقیقت کے اظہار کے لیے زبان سے کچھ کہتا ہے، اس توازو کا اعتبار ہے. یعنی دل میں بھی وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ سب مجھ سے بہتر ہیں، یہ سب مجھ سے بہتر ہیں، اور پھر زبان سے کہے ضرورت کے وقت کہ نہیں نہیں تم سب مجھ سے افضل ہیں، اس لیے تم ہی یہ کام کر لو، مثال کے طور پر. لیکن دل میں یہ سمجھ رہا ہو کہ افضل تو میں ہی ہوں، لیکن میں اگر ایسا کہوں گا کہ آپ سب افضل ہیں تو ان لوگوں کی نظروں میں میری قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی، تو یہ تو بہت خطرناک قسم کا تکبر ہے. یہ تکبر بشکل توازو ہے، یہ تو کیموفلاج کر دیا کہ تکبر ہے مگر توازو سے اسے کیموفلاج کر دیا، یہ تو اور خطرناک ہے. اسی طرح جو ہے لوگوں کا یہ کہنا کہ میں حقیر ہوں، میں لاشعی ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں گندا ہوں، میں گنہگار ہوں، مگر دل میں، دل سے وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں. دل سے یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے بھی گناہ ونا کیے ہوں گے، مگر ان لوگوں سے بڑا گنہگار میں نہیں ہوں، یہ جن سے میں بات کر رہا ہوں یہ گناہ میں مجھ سے آگے ہیں. اور دل میں یہ خیال آئے کہ بھائی یہ جملے تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ یہ لوگ مجھے متواضع سمجھیں، یہ تو دھوکہ دینا ہے. پھر وہی بات، کیموفلاج کرنا ہے اپنے تکبر کا. تو ایسا یہ تکبر نہیں ہے. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہاں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو دل پر اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ حقیقت میں ان کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ سب مجھ سے افضل ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب آپ سے افضل ہیں، حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال، ہر مسلمان کو حالن، اور ہر غیر مسلم کو معالن اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. حالن کا معنی اسی وقت. تو پوری دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان میں سے ہر مسلمان کو اپنے سے اس وقت افضل سمجھتا ہوں، اور جتنے غیر مسلم ہیں ان کو میں معالن فیوچر کے اعتبار سے اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ کفر میں مبتلا ہے اور مجھے اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے، اس لیے اس وقت تو میں افضل ہوں ایمان اور کفر کے اعتبار سے، لیکن کل، پرسو، ایک مہینے، دس سال کے بعد وہ اسلام قبول کر لے اور اسلام قبول کر کے مجھ سے آگے چلا جائے، یہ ہو سکتا ہے. تو جب کسی کو معالن آپ اپنے آپ سے افضل سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ایسا ہو جائے، تو اس کے سامنے بھی کوئی اکڑ سے نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس وقت میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا. اور ہر مسلمان کو فی الحال، اب یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ایک شخص ہے وہ بخاری شریف پڑھاتا ہے، मुस्लिम शरीफ पढ़ाता है, तिर्मिजी शरीफ पढ़ाता है, ढेरों इल्म है, टनों मनो इल्म है उसके पास, एक देहाती को अपने से अफजल कैसे समझेगा। एक शख्स मशीखत की मसनद पर बैठा हुआ है और बड़े बड़े उलमा उसके सामने आकर घुटने टेकते हैं, वो किसी और को अपने से अफजल कैसे समझेगा। ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुहाल चीज है। आम आदमी के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि भाई ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि तवादु का माना यह है कि दूसरों को अपने से अफजल समझे और खुद को उनसे कम दर्जे का समझे। और खुद को अफजल समझना और दूसरों को अपने से कम दर्जे का समझना हकीर समझना, हिकारत के साथ, ये तकब्बुर है। और तवादु यह है कि दूसरों को अपने से अफजल समझे, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तो उसका तरीका ये है, उसका ये जो ये अकाबिर मशाइख जो हैं, इनकी सोच बदल जाती है तज़किया की बरकत से। उनको अच्छी सोहबत मिलती है, वो अपने मशाइख की सोहबत में रहते हैं, अपने शेख की खिदमत करते हैं, उनकी तवज्जो लेते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, उनके सामने अपने अहवाल बयान करके धीरे 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 तरक्की करते हैं, जिक्र खूब करते हैं और गुनाहों से बचने का मुजाहदा करते हैं। उसके नतीजे में सोच बदल जाती है, और यह सोच का बदल जाना यही तज़किया है, सोच बदल जाती है। तो पहले सोच ये होती है कि मेरे पास इल्म ज्यादा है लिहाजा ये मुझसे हकीर, मैं नमाज नफलें बहुत पढ़ता हूं इसलिए मुझसे हकीर, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं इसलिए मुझसे हकीर, ये सोच पहले। और तज़किया की बात सोच क्या हो जाती है, तज़किया की बात सोच ये हो जाती है कि जाहिरी एतबार से मैं इससे अफजल हूं, लेकिन इंसान की दो हालतें हैं, जाहिर और बातिन। तो अल्लाह ताला शानहु किसी के अफजल होने और किसी के कम दर्जे होने का फैसला करते हैं तो जाहिर और बातिन दोनों को मिलाकर फैसला करते हैं। तो हो सकता है कि जाहिर में तो मैं इससे अफजल हूं, लेकिन जाहिर और बातिन को जब मिला दिया जाए तो इसके पास बातिन में ऐसी अच्छी अच्छी खसलतें हों और मेरे पास बातिन में ऐसा कोई नुक्स हो जिसकी वजह से जब जाहिर और बातिन एक्सटेरियर और इंटीरियर को देखेंगे तो दोनों को का मजमुई जब हिस्सा देखेंगे तो उस सूरत में अल्लाह की नजर में मुझसे अफजल होगा। मिसाल के तौर पर इसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, इसके पास मेरे पास जितना इल्म है इतना इल्म नहीं है, मेरे पास जितनी जहानत है उतनी जहानत नहीं है, लेकिन मेरे पास इखलास जो है वो एक कतरा है और इसके पास समंदरों जितना इखलास है, मजमुई हैसियत से बहुत आसान है। अगर ये सोच पैदा हो जाए कि बातिन से तो मैं वाकिफ नहीं हूं, तो इस एतबार से ये भी मुझसे अफजल हो सकता है, ये भी 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 अफजल हो सकता है। और अगर ये भी मुश्किल है, मिसाल के तौर पर फर्ज कर लीजिए कि एक शेख है, तो शेख के सामने खुद का जाहिर भी है खुद का बातिन भी है, और उसका एक मुरीद है जो मुकम्मल इत्तिला और इत्तिबा का मामला करता है, तो उसका भी जाहिर और बातिन है, तो दोनों उसके सामने हैं। और वो लिखता है कि मैं रिया में भी मुबतला हूं, मैं किबरा में भी मुबतला हूं, मैं उजब में भी मुबतला हूं, और तहकीक से शेख को पता भी चले कि ये सब चीजें हैं, उसके बारे में कैसे सोच सकता है कि ये मुझसे अफजल है। तो उसके बारे में इस तरह सोचा जा सकता है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन वालुहु के यहां अदल भी है फजल भी है। हो सकता है कि अल्लाह उसकी किसी एक नेकी या एक जज्बे से खुश होकर बहुत ऊंचे मर्तबे दे दे और मेरी किसी एक कमी को देख करके पकड़ फरमा ले, तो इस एतबार से ये मुझसे अफजल है। और तीसरी शक्ल यानी इसमें दूसरी शक्ल कि हो सकता है कि आज तो ये मुझसे मफजूल है कल मुझसे अफजल हो जाए, तो इसलिए वो ऐसा समझते हैं कि ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे बेहतर है। और एक चौथी बात ये है कि दिल पर मेहनत करके अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु की बड़ाई और अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु का उलूवे मर्तबत होना, और अल्लाह जल्ल जलालहु व अम्मा नवालहु का बुजुर्ग तर होना कि अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है, बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है, बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है। अल्लाह की मारिफत जब उनके दिल दिमाग पर मुस्तवली हो जाती है तो खुद को मादूम पाते हैं कि अल्लाह के इल्म के मुकाबले में हमारा इल्म तो जीरो है। और अल्लाह की जो शान है उसके एतबार से हम जो इबादत पेश करते हैं वो जीरो है, तो उस एतबार से वो अपने आप को इतना कम दर्जे का महसूस करते हैं कि उनके लिए दूसरे की एक नेकी देख करके भी ये फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं नहीं माशाल्लाह ये मुझसे ज्यादा अफजल है, तो दूसरों को अपने से अफजल समझने का मतलब यह है कि दिल से ऐसा समझते हैं। और ये ऐसे ही नहीं हो सकेगा, तज़किया के नतीजे में होता है। तज़किया जब होगा तो तकब्बुर निकल जाएगा। तज़किया का माना दिल को साफ कर लेना, तो दिल में से बुराई निकाल देना और दिल में अच्छाई ले आना। बुरी कारपेट निकल गई, अच्छी कारपेट आ गई। बुरी ट्यूबलाइट निकल गई, अच्छी ट्यूबलाइट आ गई। बुरे वॉलपेपर निकल गए, अच्छे वॉलपेपर आ गए। ये है तज़किया। तो दिल में जो बुराइयां होती हैं वो निकल जाती हैं, उनकी जगह पर अच्छाइयां आ जाती है। तकब्बुर बुरी चीज है और उसका ऑपोजिट तवाज़ु है, प्राइड और हम्बलनेस। तो प्राइड निकल जाती है, हम्बलनेस आ जाती है तज़किया के नतीजे में। और फिर वो ऑटोमेटिक होता है, जब अंदर हम्बलनेस है तो ऐसा ही समझेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं। तो एक बात ये अर्ज करनी थी। दूसरी बात ये अर्ज करनी थी कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर आप कुछ मर्तबा चाहते हैं तो खुद को मिटाओ। तो मिटाओ का मतलब यही है कि अपने आप को अनाहिलेट करो। अनाहिलेट का मतलब यही है कि मैं बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ताकतवर नहीं हूं, मैं इतना होशियार नहीं हूं जितना खुद को समझ रहा हूं। नहीं, मिटाने का मतलब यह है कि अपने जो दिमाग में ऐसा होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ये मिटाओ। ये दिमाग में ये जो ख्याल है, मैं अना मैं, मेरे दिल का कोई तकाजा नहीं है। एक अल्लाह वाला कहता है कि मेरे दिल का कोई तकाजा नहीं है, मेरा कोई डिजायर नहीं है, मेरे दिल की कोई चाहत नहीं है, एक ही चाहत है मेरी, मैं कुछ नहीं चाहता, एक ही चीज चाहता हूं। मेरे दिल का कोई तकाजा नहीं है, मैं अपनी अना की फना चाहता हूं। बस मैं अना जो मेरे अंदर है कि मैं उसकी फना चाहता हूं कि ये खत्म हो जाए। और जब तक ये मैं रहेगा कि आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा और ये नहीं जानता है मैं कौन हूं, मेरे सामने होता है, कि जब तक ये मैं, भाई हमारी हैसियत क्या है, इब्तिदा हमारी नुतफे से हुई है, पेट में गंदगी लेकर फिर रहे हैं, और कल जब हमारी रूह निकलेगी तो यही लोग जो प्यार से हमारा हाथ चूमते हैं, प्यार से हमसे मुसाफा करते हैं, प्यार से हमें गले लगाते हैं, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। हाथ तो बहुत दूर की बात, वो मैयत के ऊपर जो चादर होती है ना, उसे हटाने का मौका आता है और 10 आदमी खड़े होते हैं और एक आदमी कहेगा कि जरा चादर हटाओ, तो कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। और मैयत के ऊपर जो चादर पड़ी हुई होती है वो किसी के हाथ में लग जाती है तो फौरन हाथ धोने के लिए चला जाता है। और वो जिसके बगैर चैन नहीं पड़ती थी कि हर वक्त मेरे पास रहे, हर वक्त मेरे पास बैठे, उसके बदन से अगर रूह निकल जाए और फिर कहे कि जरा एक घंटे आप इनके साथ इस कमरे में अकेले रहिए, कोई रहने क्या हैसियत क्या हमारी, मैं कब्र में हमें रख दिया जाएगा, खून और पीप हो जाएंगे, बदबू आने लगेगी 3 दिन के बाद, कीड़े पड़ जाएंगे, और हमारी हालत कब्र में ऐसी हो जाएगी अगर 6 महीने के बाद खोदे तो हर शख्स देखकर भागे, और कयामत के दिन तो अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, वहां हमारी हैसियत ही क्या होगी। जो बड़े बड़े दिमाग वाले थे, बड़े बड़े दिमाग वाले हैं। कब्र में गए, मिले खाक में अहले शां, कैसे कैसे खाक में मिल गई। यानी वो लोग जो दुनिया में अपनी बड़ाई की वजह से गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, गरीबों के साथ मिक्स हो जाना नहीं कि उसकी बॉडी और मेरी बॉडी एक हो जाए, नहीं, गरीबों से 5 यार्ड के फासले पर भी बैठना पसंद नहीं करते थे। बहुत लोग ऐसे होते हैं बड़ाई की वजह से, ना भाई ये गरीबों का है, ये गरीबों का घर है, ये पुना, ऐसे बड़ाई वाले लोग होते हैं कि अपनी आखिरत के लिए, दुआओं के लिए, बरकतों के लिए, मशवरों के लिए उलमा को अपने घर बुलाते हैं कि जरा आपका काम है, किसी वक्त अगर आप आ सके तो। उलमा के घर नहीं जाएंगे, क्यों भाई? इसलिए कि उनकी नजर में वो दुनियावी एतबार से गरीब है। तो अरबी में कहते हैं कि नेमल अमीर अला बाबिल फकीर, बेसल फकीर अला बाबिल अमीर, वो फकीर बुरा है जो किसी अमीर के दरवाजे पर नजर आए, और वो अमीर बहुत अच्छा है जो किसी फकीर के दरवाजे पर नजर आए। इसलिए कि फकीर का किसी अमीर के दरवाजे पर जाना ये फकीर के लिए जिल्लत है, अमीर का किसी फकीर के दरवाजे पर जाना ये जिल्लत नहीं, उसकी इज्जत है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी वहां गया। नदवतुल उलमा लखनऊ में एक मरतबा जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा, और उसमें अरब के बड़े बड़े शुयूख आए हुए थे। तो गल्फ वगैरह के बारे में लोगों का ऐसा तासुर है कि भाई वहां माल बहुत है, तो वहां से कोई आया है तो ये माल भी बहुत देंगे, और ये माली लालच ही में इन लोगों को दावत दी गई है वगैरह वगैरह, तो ऐसी कोई चेमी गोइयां चली होंगी। तो हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के कानों में ये बात पहुंची, तो हजरत ने थोड़ी उसकी सफाई के लिए उस जलसे में 2-4 कलिमात कहे। तो उसमें वो बड़े बड़े शुयूख जो बैठे हुए थे ना, यानी दीनी एतबार से भी शुयूख थे और दुनियावी एतबार से भी शुयूख बैठे हुए थे, तो उनके सामने यही कहा कि इन हजरत को हमने यहां पर इसलिए नहीं बुलाया है कि इनसे हम कोई माली मफादत हासिल करें, कि ये हजरत जो यहां बैठे हुए हैं वो तो इसके मिसदाक हैं कि नेमल अमीर अला बाबिल फकीर। उल्टा तो हुआ ना, हम तो वहां नहीं गए ना, बेसल फकीर अला बाबिल अमीर। तो अहले इल्म जो है उन्हें भी अपना इल्मी वकार बाकी रख करके सारे काम करने चाहिए। कभी दीनी तकाजा हो तो जाने में कोई हर्ज भी नहीं है, दीनी तकाजा, लेकिन इल्म को जलील नहीं करना चाहिए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह को जब गवर्नर बुखारा ने यह कहा कि आप आकर के हदीस का दर्स दीजिए मेरे बेटों को, मेरे घर आइए, तो क्या फरमाया आपने? अना ला उदिल्लुल इल्म, मैं इल्म को जलील नहीं करता, वला अहमिलुहु इला बाबिल उमरा, और मैं इल्म को उठा करके उमरा के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, अगर इल्म चाहिए तो यहां आकर के ले जाओ। तो क्या उनको यह जौक और जज्बा नहीं था कि वो जाकर के इल्म पढ़ाएं? नहीं, उनको एहसास था कि इस मौके पर फायदे के बजाय नुकसान होगा, तो उलमा को यह सोचना चाहिए। और हारून रशीद ने जब हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि मैं मदीना मुनव्वरा में आया हुआ हूं, आप कोई वक्त मुकर्रर कीजिए, महल पे आइए, मैं आपसे हदीस पढ़ना चाहता हूं, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहलवाया कि या अमीर अल मुमिनीन अल इल्म ला याती यूता इलैहि, इल्म किसी के पास जाता नहीं है, इल्म के पास आना पड़ता है। तो क्या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह में तकब्बुर था? और क्या उनको दीन फैलाने का और अहादीस शरीफा को आम करने का जज्बा नहीं था? हमारे अंदर ही दीन को आम करने का ज्यादा जज्बा पैदा हो गया है, उनसे भी हम आगे बढ़ गए, तो जाना भी पड़ता है। ऐसे भी वाकियात मिलते हैं कि घर घर जाकर के लोगों को समझाया है, मगर दीन इल्म उलमा दीन के शियार का वकार बाकी रही है, मकासिद दीन में से है। कनाडा में तालिब इल्मी के जमाने में जब मैं 1984 में दारुल उलूम बरी की तरफ से हजरत मौलाना यूसुफ मुताला साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अमेरिका तरावी पढ़ाने के लिए भेजा, और मेरे इल्म के मुताबिक दारुल उलूम बरी की मदरसे की तरफ से सबसे पहले किसी को भेजा गया तो वो मैं ही था। मुझे वहां से दरखास्त आई तो मुझे वहां भेजा। तो कनाडा में कुछ हमारे रिश्तेदार रहते थे, तो उनको पता चला कि मैं अमेरिका आया हुआ हूं। उन्होंने राब्ता किया और कहा कि उस वक्त दुनिया इतनी छोटी नहीं थी जितनी आज है, तो इतना आना जाना लोगों का नहीं होता था कि भाई यहां तक आए हैं तो यहां भी आओ। तो मैं वहां गया, तो पहली मर्तबा जब मैं गया था उस वक्त तो नहीं, मगर दूसरी या तीसरी मर्तबा जब मैं अमेरिका से वहां उनके पास गया तो हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब रहमतुल्लाह अलैह वहां रमजान गुजारने के लिए तशरीफ लाए हुए थे। तो हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब रहमतुल्लाह अलैह के साथ 8-10 दिन बहुत करीब रहकर के गुजारने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को मुझसे मोहब्बत हो गई, और वजह उसकी यह है कि हमारे फूफीजाद भाई थे, ये मौलाना सालेह माकड़ा साहिब जो हमारे फूफीजाद भाई हैं और कफलेता में उस्ताद हदीस हैं, उनके बड़े भाई मुफ्ती शब्बीर, और जवानी में रमजान मुबारक में जमात में निकले हुए थे और एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया। तो वो हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहे थे, डाभिल में खिदमत बहुत की थी उन्होंने, बहुत शरीफ उत्तबा थे वो, बहुत नेक, बचपन ही से बहुत नेक थे। पूरे हमारे भुरिया गांव में भी तालिब इल्मी के जमाने में उनको इस नजर से देखा जाता था कि भाई ये कोई बुजुर्ग आदमी है, बहुत शरीफ उत्तबा। मेरे ऊपर भी उन्होंने मेरी तालिब इल्मी के जमाने में वहां डाभेल से खतूत लिख के वो महफूज है, वो नसीहतों से भरे हुए होते थे, कैसा करना, ये ख्याल रखना, ये ख्याल रखना, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। तो मौलाना अबरार अहमद साहिब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुझसे मुझे मोहब्बत हो गई इसलिए कि तू शब्बीर के मुशाबे है, तेरी शक्ल शब्बीर के मुशाबे। तो खैर बहुत पुरलुत्फ सफर हो रहा था, शफकत बहुत रही हजरत की उस वक्त। तो हजरत ने उस वक्त मुझे कहा था कि एक नसीहत पल्ले बांध लो, काम आएगी। क्या है वो? कि अपनी इज्जत मत कराना मगर इल्म की इज्जत कराना, अपनी इज्जत मत कराना मगर इल्म की इज्जत कराना। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि अमीर लोग जो हैं, अमीर लोग, अमीर मनसब में ऊंचे हों या माल के एतबार से बड़े हों, तो उन्हें तलबा उलमा तकवे वाले तबलीग वाले नेक लोगों के पास जो कि वर्किंग क्लास के हों आर महसूस नहीं करनी चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हुक्म हुआ था कि वस्बिर नफ्सक मा अल्लज़ीन यदून रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहु, जाओ ये जो गुरबा फुकरा मस्जिद में बैठे हुए हैं उनके पास जाकर के बैठो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठा करते थे उनके साथ, और फिर खुशी से ये फरमाते थे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन उम्मती मन उमिरतु अन असबिर नफ्सी माहुम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरी उम्मत में ऐसे बंदे पैदा किए कि जिनके साथ बैठने का मुझे हुक्म हो रहा है। इसमें क्या हो गया? और हमेशा जो है जिसका काम होता है वो बढ़कर के आगे जाता है, जैसे ओलमा को जब चंदे की जरूरत पड़ती है तो वो अमीरों के पास जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं। तो अमीरों को जब मसला पूछने की जरूरत पड़े, अमीरों को कोई मशवरा पूछने की जरूरत पड़े, तो उन्हें ओलमा के घर जाना चाहिए, ओलमा के मदरसों में जाना चाहिए। आर क्यों महसूस करते हैं? बड़ी बड़े दफ्तरों में जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में जाते हैं, होम ऑफिस में जाते हैं, वीजा के लिए एम्बसीज में जाते हैं, उस वक्त आर महसूस नहीं होती। तो जो उमरा है, ऊंचे मनसब वाले लोग हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें भी एक मनसब दिया है, मगर जिनके पास इल्म है, जिनके पास तकवा और नेकी है, उनको भी अल्लाह ने मनसब दिया है। और अहले इल्म को चाहिए कि वो अपने आप को दीनी मसलहत, दीनी मसलहत, दीनी मसलहत के नाम पर न अपने खुद को पामाल करें, न अपनी इज्जत को पामाल करें, न इल्म की वकार को पामाल करें। हजरत नानूती रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि एक शख्स जो है बहुत इखलास के साथ सिर्फ दीन पहुंचाने की गर्ज से अगर उमरा के साथ बैठे तो क्या हर्ज है इसमें? इसलिए नहीं जाता कि मालो मता की लालच है। तो हजरत नानूती रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इल्म की और एक आलिम की ये कम जिल्लत है कि वो तो वहां जा रहा है दीन पहुंचाने के लिए, लेकिन वो दिल दिल में ये सोच रहे हैं कि ये हमारे पास हमारे पैसों की वजह से आ रहा है। और उमरा जो है अनजिलुन्नास मनाजिलहु, हदीस में हुक्म है कि भाई हर शख्स को उसके मर्तबे के मुताबिक उससे मिलो। तो उमरा, तुज्जार, जिनकी एक हैसियत होती है, जब वो उलमा के पास जाते हैं तो उलमा उनका एहतराम करते हैं और एहतराम से मिलते हैं उनके साथ। माल की वजह से नहीं, हदीस पर अमल करने की वजह से। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बात जरा थोड़ी साइडलाइन हो गई, कि मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे। भाई जमीन की मिट्टी जो है, जमीन की मिट्टी वो उस शख्स से तो ज्यादा हकीर है ना जिसको आप इस वक्त हकीर समझ रहे हैं। ना ना, ये गरीब आदमी है, ये टैक्सी ड्राइवर है, ये फैक्ट्री में काम करने वाला है, मैं इसके साथ नहीं बैठता। तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले शान, ये ऊंची ऊंची शानों वाले जो दुनिया में गरीबों के साथ, वर्किंग क्लास के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, मस्जिद में बयानों में इसलिए नहीं जाते थे कि हमें गरीबों के साथ बैठना पड़ेगा, ना हम नहीं जाते वहां। तो कहते हैं कि वो जो गरीब है उससे भी जो कम दर्जे की चीज है मिट्टी, जो जिसे हर छोटा बड़ा रौंदता है, गरीब भी और अमीर भी, कहते हैं कि उसके साथ मिल गए और उसके पास जाकर के नहीं बैठे, मिल गए, खाक बन गए। वो मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। नामवर मशहूर, तो मशहूर लोग बेनिशां हो गए, किसी को कुछ पता ही नहीं। 20, 25, 30, 40 साल पहले जो बड़ा आदमी, मनसब के एतबार से भी बड़ा, माल के एतबार से भी बड़ा, दुनियावी वजाहत के एतबार से बड़ा, बहुत चर्चा, जहां देखो चर्चा, जहां देखो चर्चा, जहां देखो चर्चा, वो आए तो लोग खड़े हो जाएं, उसके इशारे पर लोग चलें। आज कब्र में पड़ा हुआ है और दुनिया में उसको कोई जिक्र भी नहीं, और उसकी कब्र के पास से कोई गुजरता है ना तो फातिहा भी नहीं पढ़ता, इसलिए कि दुनिया में उसके डर से या उसकी लालच, उससे कुछ लेने की लालच से इज्जत करते थे, मोहब्बत छोड़ी थी। और बुजुर्गों के मजार को देखो, एक अंग्रेज जो है, अंग्रेज जब अंग्रेज का वहां दौर था तो एक अंग्रेज मजामीन वगैरह लिखने वाला, उसने इंडिया का दौरा किया, और इंडिया का दौरा किया तो पूरा सफरनामा लिखा। तो वो जो है अजमेर भी पहुंचा, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, और वहां देखा कि रोजाना हजारों आदमी आते हैं और जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो उसने जो उसने सफर कि मैंने एक अजीब गरीब चीज देखी इंडिया में, एक मुर्दा को देखा जो जिंदों पर हुकूमत कर रहा है, एक मुर्दे को देखा जो जिंदों पर हुकूमत कर रहा है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शेख अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह, बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम है आज भी। और खिलाफत उस्मानिया के जो सलातीन है कोई जानता भी नहीं, कई तज़किरा भी नहीं उनका। वो किसी कोर्स में, हिस्ट्री के कोर्स में जरूरत पड़ जाती है ना, उस वक्त थोड़ा बहुत रट लेते हैं। और अल्लाह ताला शानहु ने मुसख़्खर किया सबको कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं दीनी एतबार से, जो फुकरा थे मगर दीनी एतबार से बड़े, आज इनका जब भी कोई नाम लेता है तो हजरत और अखीर में रहमतुल्लाह अलैह, यानी हिस्सा, नाम का हिस्सा ही हजरत रहमतुल्लाह अलैह, हजरत रहमतुल्लाह अलैह बीच में नाम। मिले खाक में अहले शान कैसे कैसे, ये शान वाले खाक में मिल गए, मिट्टी में हो गए, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे। जो मशहूर लोग थे, नाम वाले थे, बेनिशा हो गए, मक्की हो गए ला मक्का कैसे कैसे। जो मकीन थे, मकीन, ये फुना का महल है, ये फुना का बंगलो है, ये फुना की फैक्ट्री है, ये फुना का की रहाइश गाह है, मकी मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। आज उनकी कोई जगह ही नहीं, कब्रिस्तान में जाए कि भाई फुना सेठ साहब की कब्र कहां है तो ढूंढनी पड़ती है। और जो अवलिया है पूरी दुनिया जानती है कि वो कहां है। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां। आसमान को तो जमीन नहीं खा सकती ना, जमीन नीचे आसमान ऊपर, लेकिन दुनिया में जो ऊंचे उड़ते थे कि मैं बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, तो आसमान बनकर जो रहते थे, ऐसे कितने आसमानों को जमीन खा गई। तो ये जो है बढ़ाई बढ़ाई तकब्बुर, इसका दुनिया में भी फायदा नहीं। देखो जो मुतकब्बिर होगा उसे ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पीछे सब चलते हैं, मेरी बात सब मानते हैं, मेरे इशारे भी सब चलते हैं, मगर सबके दिलों में नफरत होती है। ऐसा आदमी जब मर जाता है तो लोग खुश होते हैं। इसी वजह से जो सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब करते थे, मरने के बाद जाकर के देखोगे उसकी कब्र पर कितने आदमी जाते हैं, वहां एक महीने तक कयाम करके देखोगे कितने आदमी आते हैं। और वो बेचारा गरीब फकीर मगर अल्लाह वाला था, नेक बोरिया नशीन। दुनिया में भी ऐसे लोगों को अल्लाह हुकूमत अता फरमाते हैं, बेताज बादशाह कहते हैं इनको, बोरियों पर बैठने वाले, उनके भी दाएं बाएं आगे पीछे बहुत लोग होते हैं, मगर मर मिटते हैं और जब इंतकाल होता है तो रोते हैं, रोते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल रहीम मुताला साहिब रहमतुल्लाह अलैह का जाम्बिया में चिपाटा में इंतकाल हुआ, वहां हमारे कई शागिर्द हैं, जाम्बिया में भी एक दो थे, अब वो चिपाटा चले गए, तो चिपाटा में भी थे, अब सब जो है वहां लुसाका में चले गए हैं। तो लुसाका से वो सारे हजरत, जाहिर है अल्लाह वाले थे, हमें भी हजरत से मोहब्बत थी, हजरत भी हमसे मोहब्बत करते थे, जब भी जाम्बिया जाना होता था तो उस तरफ मलावी की तरफ जाते थे तो हजरत के पास जाते थे, कम वक्त लेकर जाते थे, शिकवा भी करते थे कि हमारे लिए इतना ही वक्त लेकर आए। तो शफकत फरमाते थे, मोहब्बत फरमाते थे, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए हजरत को। तो वो सब वहां जनाजे में गए और मुझे भी जरा ऐसी हजरत से ताल्लुक था, दिल पर असर भी था, तो एक एक जुस्तजू रहती है ऐसे मौके पर कि इंतकाल के आखिरी अहवाल क्या हुए होंगे, जनाजे में क्या, एक जानने को शौक होता है। तो वहां से हमारे मौलाना अनस साहब ने फोन किया और मौलाना अनस साहब ने कहा कि चिपाटा बहुत छोटी जगह है, लुसाका बड़ी जगह है, और फिर इंतकाल हुआ और शरीयत मुतहरा के मुताबिक जो है सुन्नत के मुताबिक जल्दी से जल्दी तदफीन भी अमल में आ गई, किसी का इंतजार वगैरह नहीं किया गया। तो चिपाटा छोटा है लूसा का बड़ा, लूसा का में बस्ती भी बड़ी है चिपाटा में कम। तो मौलाना अनस मुझे कहने लगे कि मैंने लूसा का में बड़े बड़े दुनियादार और ताजिर लोगों के बड़े बड़े जनाजे देखे हैं, मजमा मजमे के एतबार से, और कहा हजरत मौलाना का भी देखा और चिपाटा के एतबार से बहुत बड़ा जनाजा था। उन्होंने कहा चिपाटा के एतबार से बहुत बड़ा जनाजा, लेकिन कहा कि वहां पहुंचने से लेकर तदफीन वगैरह से फारिग होने तक लोगों में जो वारफ्तगी और मोहब्बत और हजरत मौलाना के दुनिया से चले जाने की वजह से सदमा और आंखों से आंसू टपकते हुए देखे, मैंने मेरी जिंदगी में किसी जनाजे में यह बात नहीं देखी। यह है महबूबियत अल्लाह वालों की। मजमा तो बहुत बड़ा बड़ा देखा, बड़े देखे मैंने भाई, आ जाते हैं ताल्लुक वाले, मुंह दिखाने की रस्म भी होती है ना कि भाई मैं नहीं जाऊंगा तो ये, तो मुंह दिखाने के लिए भी आते। लेकिन जो गम था लोगों के चेहरों के ऊपर, एक अफसोस गम और आंखों से आंसू बह रहे थे, और जो मोहब्बत के मनाजिर और जो फिराक का गम जो शरी हद में रहकर सब कुछ, ताकि वो मैंने कहीं नहीं देखा। तो तकब्बुर वाला आदमी दुनिया में भी जलील, दुनिया में भी बोझ उठाता है, दुनिया में भी मबगूज है वो, अल्लाह की नजर में भी, लोगों की नजर में भी, और मौत के वक्त भी उसे परेशानी, कब्र में भी परेशानी और आखिरत में भी परेशानी। जब कब्र में ऐसे अकड़ अकड़ वाले को अंदर रखा जाता है तो कब्र उसे ये कहती है कि मेरी पुश्त पर जितने लोग, जब अंदर कब्र में रखा जाता है हदीस में आता है, तो कब्र कहती है कि मेरी पुश्त पर जितने लोग चलते थे उसमें सबसे मबगूज तू मुझे था, इसलिए कि बहुत अकड़ के चलता था, आज मैं तुझे दिखाती हूं। और फिर कब्र जो है दोनों तरफ से उसे भींचती है, यहां तक कि एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों के अंदर घुस जाती हैं, रिब्स जो है दोनों तरफ से भींचती है कि इतना बड़ा होकर के तू चलता था। कयामत के दिन जो है मुतकब्बिरीन को चूंटियों जैसा बना दिया जाएगा, छोटे छोटे मैदान महशर में जहां लाखों करोड़ों इंसान होंगे चूंटियों की शक्ल। इन्नहु लयातिर रजुलुल अजीमुस समीन, इन्फ्लुएंस के एतबार से, इज्जत के एतबार से, दुनियावी एतबार से बहुत बड़ा, और बदन भी खा पीकर मोटा फरबा हेल्थी दुनिया में था खूबसूरत, लेकिन कयामत के दिन जब वो आएगा तो अल्लाह के यहां उसके एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं होगी। माल बुरी चीज नहीं है, अगर अल्लाह तआला शानो किसी को माल देते हैं तो उसे सोचना चाहिए कि अल्लाह मुझे पसंद करते तभी मुझे माल दिया, इसलिए कि अल्लाह का फजल है। माल बुरी चीज नहीं है, माल आए और माल के आने के बाद भी इंसान में तवाजू रहे, हम्बलनेस रहे, वो बहुत आला। लेकिन माल आए और माल की वजह से अकड़ आ जाए, मैं कुछ हूं, ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक ये। मालदारों में भी अच्छे अच्छे लोग हैं, मुतवाजे हैं, हम्बल हैं, उलमा की सोहबतों में भी बैठते हैं, मशाइख के पास भी जाते हैं, और चंदा जो है वो खुश दिली से देते हैं, खुद ढूंढते रहते हैं कि गरीब कहां है, फकीर कहां है, जरूरतमंद कौन है, फिक्र रखते हैं। ये नहीं कि उनके यहां कोई चंदे के लिए गए तो अकड़ से बात की, कड़वी कसेली सुनाई और उसके बाद 100 पाउंड देकर के रवाना कर दिया। मैं तो क्या करता हूं कि भाई अगर किसी के दिल में कोई प्रोजेक्ट नहीं आता है तो मत दो, मत दो, कह दो कि भाई माजूर है, अल्लाह हाफिज। कोई ऐसा ना हो कि जुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए इल्म के बारे में, उलमा के बारे में, दीन के बारे में, जिसकी वजह से आखिरत में पकड़ हो जाए। तो ये जो तकब्बुर और तवादु अपने अंदर पैदा करने की हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, और ये आएगी तज़किया से, और तज़किया के लिए मुज़क्की, मुरब्बी और शेख चाहिए। तो ये जो है मिटा दी अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे अपनी हस्ती को मिटा दी, मैं कुछ हूं ना, ना मैं कुछ नहीं हूं, मैं क्या, मेरी हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है। जैसे 1,00,000 पाउंड वाला जब 1,000,000 पाउंड वाले को देखता है, देखो मेरी क्या हैसियत है, तो इसी तरह एक मुसलमान को तो ये सोचना चाहिए कि भाई मेरे पास पैसा तो बहुत है, फैक्ट्री भी है, सब कुछ है, मगर इसके पास तो कुरान मजीद है, उसके सीने में कुरान है, मेरी क्या हैसियत है, इसके पास हदीस का इल्म है, मेरी क्या हैसियत है। बहुत आसान है। और उलमा को तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप जो हैं वो दुनियादारों के साथ बद अखलाकी से पेश ना आए, इससे कि वो तो एहतराम ही कर रहे हैं पहले ही से, इसलिए कि उनके पास इल्म है माशाल्लाह। और वो किसी अगर कोई अच्छा आलिम दीन है, इस्लाह हो चुकी है, बुजुर्गों का सोहबत याफ्ता है, वो किसी ताजिर आदमी को देख करके दिल में ये ख्याल नहीं लाता कि ये दुनियादार है और मैं दीनदार हूं और मैं इससे अफजल हूं, ना बिल्कुल ख्याल नहीं लाता ऐसा। वो ये समझता है कि भाई ये है तो दुनियादार मगर पता नहीं इसके अंदर क्या क्या खूबियां होंगी, और ये अल्लाह के रास्ते में उतना खर्च करता है जितना मैं नहीं कर सकता, पता नहीं इसका आखिरत में मकाम क्या होगा, ऐसा सोचते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अल्लाह ताला शानहू से को इन लोगों से कितनी मोहब्बत होगी कि मदारिस और मसाजिद को चलाने का काम इनसे ले रहे हैं। वो तो इस तरह सोचते हैं उलमा, किसी की मैं हिकारत नहीं कर रहा हूं। हर शख्स जो है मेरी बातों की रोशनी में अपना एक्सरे करे, अपना सिटी स्कैन करे और देखे कि मैं जो बात कह रहा हूं अगर आप में पाई जाती है तो फिर फिक्र करने की जरूरत है, और अगर नहीं पाई जाती है तो सज्दा करके अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर अकड़ और तकब्बुर नहीं है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मर्तबा अगर आप चाहते हैं तो अपने आप को मिटाओ, और जब आप मिटाएंगे अपने आप को छोटे बनेंगे, नंबर एक अल्लाह आपको बड़ा बनाएगा, दुनिया में भी मखलूक की नजर में भी और अपनी नजर में भी बड़ा बनाएगा। नंबर दो, अल्लाह आपका बोझ उठा लेगा, और नंबर तीन, अल्लाह आपसे खलके कसीर को फायदा पहुंचाएगा, एक मखलूक को फायदा पहुंचाएगा, आपकी बहुत बड़ी मखलूक आपसे फायदा उठाएगी। देखो एक गार्डन में आप चले जाओ, एप्पल के दो दरख्त हैं, एक दरख्त पर फल नहीं आए हैं और एक दरख्त पर फल आए हुए हैं। अब गौर से देखिए, जिस दरख्त पर फल आए हुए हैं उसकी टहनी झुकी हुई नहीं है, और जिस दरख्त पर फल आए हुए हैं उसकी टहनियां झुकी हुई हैं। तो देखो जो अकड़ ऊपर, जो टहनियां ऊपर हैं पता चल गया कि इसमें कुछ लेने का नहीं है, और जो झुकी हुई है पता चल गया कि इसमें कुछ है। तो इंसान भी जो ऐसे अकड़ के रहता है, दादागिरी के साथ रहता है, तो समझ जाने का कि इसके पास कुछ नहीं है, इसकी इससे कुछ लेने का नहीं है। और जो झुका हुआ रहता है तवाजो के साथ, आई एम नथिंग, वो आई एम समथिंग वाले के पास कुछ नहीं और आई एम नथिंग वाले के पास सब कुछ है। फलदार टहनी वो ब्रांच जिसके ऊपर एप्पल लदे हुए हो झुकी हुई होगी, और जिस दरख्त के ऊपर एप्पल नहीं हो ऊंचा। मिटा दे अपनी हस्ती को, वो फैजयाब होता है उसको अल्लाह देते हैं जिससे मखलूक को फायदा पहुंचता है। जैसे एक पौधा है, एक ग्रेन है, ग्रेन सीड है, वो सीड कहेगा ना मैं जमीन में जाने के लिए तैयार नहीं हूं, ये तो ह्यूमिलिटी है, आई कांट ह्यूमिलिएट माई सेल्फ लाइक दिस, मैं जमीन में नहीं जाऊंगा। भाई क्या करेगा फिर तू, देखिए सोने की एक ट्रे ले आओ और उसमें हीरे भर दो और उसमें रेशम का एक कपड़ा रख दो और उसमें मुझे रख दो, वो सड़ जाएगा, रॉट हो जाएगा। और दूसरा कहता है कि नहीं मैं ह्यूमिलिटी इख्तियार करने के लिए तैयार हूं, जमीन में चला गया। जमीन में जाने के बाद जैसे ही जमीन में चला गया वो, गौर से देखो उसने अनहिलेट किया अपने आप को, अल्लाह ने क्या किया, अशरफुल मखलूकात इंसान को उसकी खिदमत में लगा दिया कि पानी डालो यहां, देख लिया फौरन खिदमत में लग गया, पानी डालो, एहतिमाम से वो पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है उसके लिए सब, और निकलता है पौधा तो पौधे की शक्ल में निकलता है, बराबर निगहदाश्त निगरानी के कोई उसको नुकसान न पहुंचे। بڑھتے 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 ایک درخت کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور وہ اتنا محبوب رہتا ہے کہ اس پر دوائیں چھانٹی جاتی ہے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، سڑ نہ جائے، یہ درخت مر نہ جاوے، کتنا خیال کیا جاتا ہے، اسے پرون کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، چاروں طرف سے خوبصورت رکھا جاتا ہے، اس میں پھول آ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، چڑیا اس میں گھونسلہ بنا رہی ہے، اس کے پتوں سے جانور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے پھلوں سے انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے سائے سے کتنی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ دیکھو جو ہمبلنس اختیار کرتا ہے، دھیرے 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 اللہ اسے بڑا بھی بہت بناتے ہیں۔ وہ جو وہ سونے کی ٹرے میں وہ پڑا ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے، ابھی چھوٹا ہی ہے، خود کو جو بڑا سمجھ رہا تھا، اور یہ دیکھو کتنا بڑا درخت ہو گیا۔ اور پھر اس پر سے پھل، پھل کے سیڈز، اور ان سیڈ سے اور درخت، یہ سلسلہ پھر قیامت تک فیض جاری سلسلہ۔ اللہ دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، آخرت میں بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ ان کو مفید بھی بناتے ہیں، ہر بوجھ اللہ ان کا اٹھا لیتے ہیں۔ آپ جو ہے کھیتی میں جاؤ، گیہوں کی کھیتی ہے، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ وہ پودے جھک کر کے زمین پر پڑے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں؟ کھڑے ہیں بالکل ایسے۔ وہ جو دانا ہے اس نے جب زمین میں اپنے آپ کو مٹایا، درخت سے اب کھیتی پہ آ گیا ہوں، وہ دانا اس نے جب اپنے آپ کو مٹایا تو مٹانے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک دانا تھا، وہ لہ لہاتی ہوئی کھیتی میں اگا اور اس کے اوپر بالیاں آئی، ایئرز آئے، اور ان ایئرز کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے دانے، تو ایک دانے سے 700 دانے نکل آئے، 800 دانے نکل آئے، 500 دانے نکل آئے۔ ہیومیلٹی اختیار کی تو، لیکن اب جب اس کو دیکھتے ہیں، غور سے عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو کھڑی نظر آتی ہے، اور اس کے فرام دی ادر سائڈ پرسپیکٹو، یعنی اس طرف سے، اس جانب سے دیکھتے ہیں، وہ کھیتی کی جانب سے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پراؤڈ ہے اور کھڑی ہے ایسے کہ دیکھو میں، میرے اندر بہت کمالات ہے کہ میرے پاس اتنی گرینز ہیں۔ تو مٹا تو اللہ نے کھڑا کر دیا، لیکن ایسے کھڑی ہو گئی پرائڈ کے ساتھ تو کٹنے کا وقت آ گیا، کسان اگر کاٹ دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کوکونٹ کا درخت دیکھا ہوگا، وہ اکڑ کے کھڑا رہتا ہے، اور آپ نے تربوز کی وائن دیکھی ہوگی، تربوز کا بیل، یہ تربوز کا جو ہے، تربوز بڑے بڑے، یہ تربوز واٹر میلن، اس کا ایسے بیل ہوتی ہیں، بیل بیل یہ وائر جیسا، اس کا پلانٹ جو ہے وہ وائر جیسا ہوتا ہے، تو وہ زمین پر پڑا رہتا ہے ایسے، اور اس پر سے چھوٹا سا تربوز لگتا ہے اور بڑھتے بڑھتے ایسے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمبلنس کے ساتھ زمین پر پڑی رہتی ہے یہ وائن، ایسے بالکل کھڑی نہیں ہوتی کسی بھی جگہ پر۔ تو شروع سے اخیر تک تربوز کا بوجھ وہ نہیں اٹھاتی، وہ زمین اٹھاتی ہے اخیر تک۔ اور ناریل، کوکونٹ، یہ سیدھا کھڑا رہتا ہے، تو کہ کھڑا رہتا ہے تو خود بوجھ اٹھا، اب اس کے اوپر جتنے ناریل ہوتے ہیں خود اٹھا کر کے کھڑا ہے۔ نشانیاں ہیں، وفی الارض آیات للموقنین ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ بس آدمی سوچے، سوچے آدمی۔ اب یہ جو جتنی مثالیں دی اور جو کچھ اب تک تقریر ہوئی، اس پر آخر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ وجود اور ترقی کس سے ہوتی ہے؟ مٹنے سے ہوتی ہے، ہمبلنس سے ہوتی ہے۔ اور فائدہ کب ہوتا ہے دوسروں کو آپ سے؟ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، सुराही को छोड़ दो, इसलिए कि यहां कोई सुराही इस्तेमाल नहीं करता। जग, जग में पानी होता है। अब जग अगर ये कहे कि मैं तो बहुत मोहतरम हूं, बहुत कीमती हूं, इसलिए कि मेरे अंदर एक ऐसी चीज है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जग ऐसा ही रहूंगा, अब पानी तुमको पीना हो तो पियो, किसी को फायदा पहुंचेगा? फायदा नहीं। ग्लास में एक कतरा पानी भी आएगा? नहीं आएगा। वो जग जब झुकेगा, हम्बल होगा, और हम्बल होकर झुकेगा तो पैमाना, पैमाना ग्लास को कहते हैं, ग्लास जो है वो भरने शुरू हो जाएंगे। सुराही जग, सर निगू होकर, सर निगू होकर ऐसी अपनी गर्दन झुकाकर भरा करती है पैमाना, पैमानों को भरा करती है। अब फाइनल बात, ये सारी तफसीलात जो है उसकी असल क्या है? असल है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। और चांद जो है वो बेनूर हो सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है, सितारे बेनूर हो सकते हैं, सूरज मशरिक से निकलने के बजाय मगरिब से निकल सकता है, ये जमीन ऊपर और आसमान नीचे आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही वाली मुबारक जुबान से निकला हुआ एक हर्फ भी गलत नहीं हो सकता। हम सबका ईमान है, गरीबों का भी, मालदारों का भी, मनसब वालों का भी, जो सीधे साधे लोग हैं उनका भी, होशियार लोगों का भी, बहुत होशियार नहीं है उनका भी, बड़े बड़े उलमा हैं उनका भी, और छोटे तलबा हैं उनका भी, सबका हमारा ये ईमान है। तो हमें फिर इस हदीस को सामने रखकर के जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्या फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ु, हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी इख्तियार करता है, अल्लाह के लिए, फेमस होने के लिए नहीं कि मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, मैं जूते सबके सीधे करूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो ना इतने बड़े मौलाना होकर के अपने तलबा के जूते सीधे किए, नहीं, अल्लाह के लिए, कि अल्लाह डजंट लाइक प्राइड, सो आई एम अडॉप्टिंग ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस। मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसे बुलंद करेगा। वो मन तकब्बरा, और जो बड़ा बनेगा, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग में रहेगा, वदाहुल्ला, अल्लाह उसे जलील करेगा, अल्लाह उसे जलील करेगा। तो ये जो मुतवाजे लोग होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, जिनके दिलों में हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी होती है, उनसे नफरत करने वाला भी अजमत से देखता है उनको, दिल में कि भाई जैसा भी है मगर है यार, काम का आदमी है, यानी जाहिरी तौर पर दुश्मनी है, इसलिए कि अपना काम नहीं निकाल पाता उससे, लेकिन दिल में कदर होती है, किसी के सामने बोलेगा नहीं। दोस्त दुश्मन सब मेरे कायल हैं मगर, दोस्त दुश्मन सब मेरे कायल हैं मगर, यानी दोस्त भी मेरी तारीफ करते हैं और दुश्मन भी मेरी तारीफ करते हैं, सब कायल हैं। शायर कहता है, मैं से मुराद मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, दोस्त दुश्मन सब मेरे कायल हैं मगर, शायर कहता है कि दोस्त और दुश्मन सभी मेरे कायल हैं मगर कोई कायल दिल से है और कोई कायल है जुबान से, कोई कायल है जुबान से, कोई कायल दिल से है। इसका मतलब यह कि दोस्त जो है वो मेरे कायल हैं और जुबान से भी इकरार करते हैं, और दुश्मन भी कायल है मगर जुबान से नहीं, वो दिल दिल में रखते हैं। तो जो भी मुतवाजे होता है, दोस्त दुश्मन सब उसको महबूब रखते हैं, और जो मुतकब्बिर होता है, दोस्त दुश्मन सब उसे मबगूज रखते हैं, हत्ता कि उसकी बीवी भी उसे बुग्ज की नजर से देखती है कि बहुत अकड़ है मेरे शोहर के अंदर, लेकिन अब क्या करे, फायदा इसी के साथ रहने में है। वो मबगूजुल खलाइक हो जाता है और वो महबूबुल खलाइक हो जाता है, तवाजु वाला महबूबुल खलाइक और ये मबगूजुल खलाइक। उस वो तवाजू वाले के दाएं बाएं आगे पीछे लोग इसलिए रहते हैं कि वो रहना चाहते हैं, और इसके दाएं बाएं आगे पीछे लोग इसलिए रहते हैं कि रहना पड़ता है। और वो इतना महबूब होता है कि मरने के बाद भी उसका चर्चा रहता है, इसका चर्चा खत्म हो जाता है। हो सकता है कि बेटों से कुछ हासिल करने के लिए लोग बेटों के सामने बहुत तारीफ कर डालें, और उसका चर्चा महबूबियत के साथ रहता है, तो कयामत तक लोग इसारे सवाब भी करते रहते हैं और इसका चर्चा ही नहीं, सब भूल जाते हैं। अल्लाह ताला शान हो मुझे आपको अमल की तौफीक दे रही, अमल की तौफीक, अमल की तौफीक। ये मुतकब्बिर होता है, जब किसी को इसका बदल मिल जाता है तो वहां चले जाते हैं, और वो जो मुतवाजे होता है उसका बदल नहीं, लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत अल्लाह पैदा कर दे कि नहीं मेरे लिए यही है, यहां से कहीं नहीं जाना है, वो निकालने की कोशिश करे तो भी ना निकले। उधर तो दर न खोलेगा, इधर में दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है। उधर तुम दर न खोलोगे, उधर वो दर न खोलेंगे, उधर वो दर न खोलेंगे, इधर में दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है, उधर उनकी इधर मेरी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ने दर नहीं छोड़ा, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने कहा पड़े रहे। तो बस आज का यही है सबक के दो बातें बयान की गई तवाज़ु के सिलसिले में, एक तो ये बल्कि कई बातें आ गई। नंबर एक, ये तवाज़ु जो है, तवाज़ु हम्बलनेस, ये हार्ट की एक क्वालिटी है, और तकब्बुर भी हार्ट की एक क्वालिटी, हार्ट का एक कंडीशन है। जब तकब्बुर होता है तो दिल में ऐसा होता है कि मैं, आई एम समथिंग, वाई, मेरी मर्जी के खिलाफ ये काम क्यों हुआ। और मुतवाजे होता है तो कि मैं छोटा आदमी हूं, कोई हरज नहीं था, इन्होंने गाली दे दी कोई हरज नहीं। दिल की हालत हो जाती है, ये नहीं कि दिल में तो तकब्बुर है और ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए। इसीलिए मैंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अली की बात की। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अली फरमाते हैं कि मैं फिलहाल हर मुसलमान को और फिलमाल हर काफिर को अपने से अफजल समझता हूं। तो किसी ने कहा कि हजरत अगर आप दूसरों को अफजल समझते हैं और खुद को छोटा समझते हैं तो इतना ज्यादा डांट डपट करते हैं सबको, तो छोटा आदमी बड़ों को तो डांट डपट नहीं करता, बैठ जा, निकल जा, ऐसा क्यों किया, ऐसा किया है। तो हकीम उम्मत थे ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा कि मेरी हैसियत उस जल्लाद जैसी है। जल्लाद, जल्लाद किसको कहते हैं? पुराने जमाने में बादशाह के पास एक जल्लाद होता था जो सजा देने पर मुकर्रर होता था। कत्ल करना है तो वो जल्लाद आकर के बादशाह के सामने यूं करके सर कलम करता था। बादशाह कहता था कि इसको 50 कोड़े लगाओ, तो वो जल्लाद 50 कोड़े लगाता था। जल्लाद उसको कहते हैं। तो हजरत फरमाते हैं कि मेरी हैसियत एक जल्लाद जैसी है जो बादशाह के सामने खड़ा है, और उसके सामने वो बादशाह वहां है और उसके सामने शाहजादा खड़ा है, प्रिंस, और बादशाह जल्लाद को कहता है कि इसको 50 कोड़े मारो। तो बादशाह के हुक्म की वजह से वो प्रिंस पर 50 कोड़े तो बरसाता है, लेकिन किसी कोड़े को मारते हुए उसको यह ख्याल नहीं आता कि मैं अफजल हूं और यह मफजूल है, बल्कि उसके जहन में यही ख्याल रहता है कि अफजल तो प्रिंस ही है और यह काम मुझे नहीं करना चाहिए, इससे कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन प्रिंस से जो बड़ा है उसने मुझे हुक्म किया है। तो क्या मेरे पास जो लोग आते हैं दीन सीखने के लिए आते हैं, इस्लाह के लिए आते हैं, और इस्लाह के लिए डांट डपट की भी जरूरत पड़ती है, बगैर डांट डपट के बहुत से रजाइल निकलते नहीं, तो वो तो मुझसे अफजल होता है, लेकिन अहकमुल हाकिमिन बादशाह है, वो जल्लाद को हुक्म करता है तो जल्लाद उसको अपने से अफजल समझते हुए भी उस पर कोड़े बरसाता है। एक लम्हे के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ख्याल नहीं आता कि ये मुझसे अफजल। तो ये ऊपर ऊपर से नहीं कहते। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अली, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अली, दोनों हजरत ये कहते हैं कि अगर कोई कहे ना कि मैं तो हकीर हूं, फकीर हूं, तो कहने का कि जी हां आप हकीर हैं, जी हां आप फकीर हैं, क्या फिर देखो उसका रंग कैसे बदल जाता है। वो कहते इसीलिए हैं कि मैं हकीर हूं, मैं फकीर हूं, मैं गुनहगार हूं, ताकि सामने वाले कहे कि नहीं नहीं नहीं, आप अगर हकीर हैं तो फिर हमारी क्या हैसियत, अगर आप बेइल्म हैं तो हम क्या, अगर आप जाहिल हैं तो हम क्या। वो ये सुनने के लिए, तो एक बात ये। और दूसरी बात ये है कि तकब्बुर अपने अंदर पैदा करो, इसलिए कि दुनिया और आखिरत में उसके फवाइद हैं, और तकब्बुर से बचो इसलिए कि दुनिया और आखिरत में उसके नुकसानात ही नुकसानात हैं, और तवाजु इख्तियार करो इसलिए कि उसके फायदे ही फायदे हैं। मुतकब्बिर आदमी हक बात कबूल नहीं कर सकता, हक बात। मुतकब्बिर आदमी की दो अलामतें हदीस में बताई गई हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने फरमाया, अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुतकब्बिर जो है तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, मगर हम तो जब कपड़े पहनते हैं तो ऐसा दिल चाहता है कि मेरे कपड़े जरा अच्छे लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकब्बुर नहीं, ये तो जमाल है, जमाल। इन्नल्लाह जमीरुन युहिब्बुल जमाल, अल किब्रो बतरुल हक वगमतुन नास। तकब्बुर की दो अलामतें हैं, दो में से जो भी एक पाई जाए वो दोनों ही होंगी एक के अंदर, मगर एक जाहिर हो जाए तो समझिएगा कि दूसरी भी होगी। वो क्या है? हक का इनकार करना, हक से एराज करना, हक कबूल ना करना। वगमतुन नास, और लोगों को हकीर समझना, लोगों को अपने से कमतर समझना, गुड फॉर नथिंग समझना लोगों को, ये मुझसे छोटा है, कम दर्जे का है, इसकी हैसियत क्या है। और फिर ये तकब्बुर का मरज जब बढ़ता है तो हक का इनकार, हक का इनकार, हक का इनकार, हक का इनकार। एक आदमी ने सही बात कही कि आपके जिम्मे मेरे 50 पाउंड है, वो भूल गया है, कहा कि नहीं नहीं हमारे जिम्मे कुछ भी नहीं है आपका, फिर उसको याद आ गया, लेकिन अब यह कि मेरी नाक कट जाएगी, वो इसी पर मुसीर रहेगा कि ना। दो तालिब इल्म है, एक में तकब्बुर है और किसी इल्मी मसले में बहसो मुबाहसा हो गया और उसको एहसास हो गया कि मेरी गलती है, मगर कबूल नहीं करेगा, तावील करेगा। और किबरा होगा तो मुफ्ती भी ऐसा ही करेगा और आलिम भी ऐसा ही करेगा, हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हक से इनकार करना यह किब्र है। तो छोटे दर्जे का किब्र जब होता है और उसमें फिर तरक्की होती है, तो तरक्की होते 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 ये हल हो जाती है कि सबसे बड़े हक का मुनकिर हो जाता है। और सबसे बड़ा हक क्या है? अल्लाह की तौहीद और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। ये जितने भी काफिर बने हैं उन्होंने कुफ्र इसीलिए किया कि उनमें तकब्बुर था, इसीलिए अल्लाह ताला शानहु कुरान मजीद में इनका तज़किरा फरमाते हैं तो दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, वकालल्लज़ीना कफरू या वकालल्लज़ीना इस्तकबरू। कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, या कहा उन लोगों ने जिन्होंने तकब्बुर किया। शैतान को सज्दा करने के लिए किया आदम अलैहिस्सलाम के सामने, सज्दे ताज़ीमी कि इनके एहतराम में सज्दा करो। आदम अलैहिस्सलाम को किबला बनाया काबे की तरह, और जैसे हमें कहते हैं कि काबे की तरफ मुंह करके मेरे लिए सज्दा करो, तो क्या आदम की तरफ मुंह करके मेरे लिए सज्दा करो। सब फरिश्तों को, सब फरिश्ते झुक गए इसलिए कि उनमें तकब्बुर नहीं था। और कुरान क्या कहता है? अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। देखा, अबा उसने इनकार किया, वस्तकबर और तकब्बुर किया, और तकब्बुर इसीलिए किया कि वकान मिनल काफिरीन। तकब्बुर की वजह से कुफ्र आता है, कुफ्र तकब्बुर का सबब है। इनकार किया उसने, सब समझ रहा था, और इनकार करने के बाद फिर जस्टिफाई करने के लिए 500 बहाने निकालता है मुतकब्बिर। उसने भी कहा ना, अना खैरुम मिन्हु खलक्तनी मिन नारी व खलक्तहु मिन तीन, मैं इससे बेहतर हूं। भाई क्यों? कि आग नीचे जलाते हैं तो ऊपर जाती है, और मिट्टी को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है। ये बहाना ढूंढ लिया इसने, तो उसको मेरे सामने सज्दा करना चाहिए, उल्टा नहीं। और आज तक वो जस्टिफाई कर रहा है कि मैं सही था, हालांकि उसे पता है कि मैं गलत। इसलिए तकब्बुर मरज ये मौत के वक्त भी बहुत खतरनाक साबित होगा, कब्र में भी बहुत खतरनाक साबित होगा, कयामत के दिन भी खतरनाक साबित होगा। इसलिए हमें तकब्बुर से बचना है, اور توازو کو اختیار کرنا ہے. توازو اختیار کریں گے دونوں جہان کے فائدے, اور تکبر میں مبتلا رہے تو دونوں جہان کے نقصانات, جو سب بیان ہو چکا. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ تکبر نکلے اور توازو آئے. تزکیہ, تزکیہ, تزکیہ. اور تزکیہ کا طریقہ کیا ہے, کسی متبع شریعت شیخ سے اپنا تعلق قائم کر لیں, بیعت کا تعلق قائم کر لیں یا اصلاح کا تعلق قائم کر لیں, اور ان کی رہنمائی میں ذکر خوب کریں, ان کی رہنمائی میں گناہوں سے بچنے کا پورا پورا اہتمام کریں, اور ان کی رہنمائی میں بری صحبت چھوڑ کر اچھی صحبت اختیار کریں, اور ان کو وقتاً فوقتاً اپنے حالات بتلاتے رہیں. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تزکیہ ہو جائے گا. آپ ایک گھر خریدتے ہیں جو ابھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, خرید لیا آپ نے, کارپیٹ بھی خراب ہے, پلاسٹر بھی اکھڑ گیا ہے, تو کیا کریں گے آپ, اس گھر میں منتقل ہو جائیں گے نہ؟ اس گھر کو ٹھیک کریں گے پہلے, کیا خود ٹھیک کریں گے؟ اگر خود آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو کریں گے, لیکن خود آپ کو مہارت نہیں ہے تو کیا کریں گے, کسی ٹھیکے دار کو, کسی بلڈر کو سونپیں گے, اور سونپیں گے اور اس کو آئیڈیاز آپ دیں گے کہ میں ایسا چاہتا ہوں. جیسے شیخ سے آپ کہیں گے کہ میرے اندر تکبر ہے, میں توازو چاہتا ہوں, توازو کا ڈیکوریشن چاہتا ہوں, مشورہ دیں گے آپ, لیکن طریقہ تو اپنا ہی اختیار کرے گا. آپ یہ کہیں کہ میں ہمیں وال پیپر چاہیے یہاں, اور پھر آپ اس کو ایسا کہیں کہ وال پیپر لگانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو سکھاتے ہیں, وہ کہے گا بھائی کسی اور کو ڈھونڈ لو, ہمارے پاس ٹائم ہم جا رہے ہیں, اور آپ بھی سر پھوڑی نہیں کریں گے. کیا چاہتے ہیں وہ بتلا سکتے ہیں آپ, لیکن کس طرح اس کو کرنا ہے اور نتیجے تک لانا ہے وہ آپ نہیں بتاتے. وہ خود وہ کہتے ہیں آئی نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ, ڈونٹ وری, وین دا ورک از فنشڈ دین یو ول سی دا ریزلٹ دیٹ یو آر ڈیزائرنگ. تو شیخ کے حوالے ہم ہو جائیں, اور شیخ کوئی حکومت ہم پر نہیں کرتے. شیخ تو یہ چاہتے ہیں, جیسے مدرسے کے اندر استاد پڑھاتا ہے, ہم سب مکتب میں گئے ہیں, تو بچپن میں مکتب میں جیسے گئے تھے ویسے یہ بڑوں کا مکتب سمجھو, اور یہ بڑوں کا مکتب سمجھو تو بچپن میں استاد جو ہے وہ بچوں جیسا معاملہ کرتا ہے, اور اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمارے ساتھ بڑوں جیسا معاملہ کرے گا, اور بھروسہ اس کے اوپر رکھے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو خوب توفیق دے کہ ہم آخرت کی فکر کریں, اور آخرت کی فکر کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے. تزکیہ یعنی دل میں سے بری چیزیں نکلیں اور اچھی چیزیں آئیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا, جو اللہ تعالی شانہ کے پاس قیامت کے دن مؤمن ہونے کی حالت میں آئے گا, وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ, اس حال میں کہ اس نے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں, فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى, تو ایسے لوگوں کے لیے بہت اونچے اونچے مرتبے ہوں گے. کن کے لیے؟ جو ایمان اور عمل صالح لے کر آئے. اور وہ اونچے اونچے مرتبے کس میں ہوں گے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا, یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو تزکیہ کرا لے. ایسا نہیں کہا کہ بدلہ ہے اس شخص کا جو ایمان اور عمل صالح لے کر آئے, نہیں, پہلے یہ بتائے کہ سب کچھ ملے گا ایمان اور عمل صالح کی برکت سے. اور ایمان اور عمل صالح زندگی میں کیسے آئے گا؟ جب تزکیہ ہوگا. تو تزکیہ ہوگا تو یہ تزکیہ کا بدلہ ہے کہ تزکیہ کے نتیجے میں ایمان اور عمل صالح, اور ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں درجات اولا. اور اللہ تعالی شانہ اماں کے بارے میں دو جگہ پر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں کہتے ہیں کہ وذکر اسم ربہ فصلى, نہیں وہ کیا ہے, قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تذکرہ کرا دیا. اور تذکرہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کو بہت یاد کرنا پڑے گا. وذکر اسم ربہ, वज़कर इस्म रब्बी, अपने परवरदिगार के नाम का खूब जिक्र किया, फसल्ला और नमाज भी पढ़ी, इसलिए कि यह भी बहुत ऊंचे दर्जे का जिक्र है, और बहुत सारी कस्में खाकर सूरह वश्शम्स व दुहाहा में अल्लाह फरमाते हैं कि वश्शम्स व दुहाहा वल कमरी इदा तलाहा वन नहारी इदा जल्लाहा वल लैली इदा यगशाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्दी वमा तहाहा व नफ्सिम वमा सव्वाहा। ये तकरीबन एक दर्जन कस्में खा करके अल्लाह फरमाते हैं कि कद अफलह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया करा लिया। तो वजह उसकी यही है कि जो तज़किया करा लेता है उसका बातिन बिल्कुल ठीक हो जाता है, बुरी चीजें निकल जाती है, अच्छी चीजें आ जाती है, जिसके नतीजे में उसकी जिंदगी में ईमान आला दर्जे का हो जाता है और आमल सालिहा मुकम्मल हो जाते हैं। और जिसकी जिंदगी में ईमान आला दर्जे का और आमल सालिहा मुकम्मल, तो इन्नल लदीना आमनू वामिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे लोगों के लिए बागात है जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, ये बड़ी कामयाबी है। और तज़किया के लिए शेख की जरूरत होती है, तज़किया के लिए शेख की जरूरत होती है। जो हजरात किसी मुत्तबे शरीयत शेख से बैअत हैं उनको चाहिए कि अपने अपने मशाइक से राबता करें, उनकी मजलिसों में जाएं, उन्होंने जो मामूलात बतलाए हैं उन मामूलात को इख्तियार करें और उनसे ताल्लुक जोड़ें, दो दो तीन तीन महीने के बाद उन पर खत लिखें, उनको अपने अहवाल बताएं। चार काम करने के हैं। नंबर एक, बहुत ज्यादा जिक्र करना है, उसमें शेख की रहनुमाई में शेख बताता है कि ये करो ये करो ये करो। नंबर दो, बुरी सोहबत से बचना है, अच्छी सोहबत इख्तियार करनी है, और खास तौर पे अल्लाह वालों की और उसमें भी अपने शेख की। और नंबर तीन, ये जो जाहिरी गुनाह जितने भी हैं उन सब से बचने की कोशिश करनी है, नमाज न छूटे, जिना न हो, शराब न हो, झूठ न हो, ये तीन काम करने की। और चौथा काम, अपने शेख को वक्तन फवक्तन अपनी हालत बतलाता रहे, खास तौर पे वो उमूर बतलाता रहे जिनमें इब्तिला है कि हजरत मेरी मदद कीजिए, इस गुनाह में मुब्तला हूं, मैं कैसे निकलूं, और शेख जो बतलाएं उस पर अमल हो। इससे इंशाल्लाह तज़किया हो जाएगा, तज़किया हो जाएगा तो ईमान और अमल सालेह आएगा, ईमान और अमल सालेह आएगा तो फौलाइक लहुमुद दरजातुल उला। अल्लाह ताला शानहु हम सबको अमल की तौफीक दे। जिन जो जो हजरात सुन रहे हैं, जिन दोस्तों का मुझसे ताल्लुक है खुसूसन वो बिलखुसूस, और बाकी जितने हजरात सुन रहे हैं जिनका किसी और शेख से ताल्लुक है नहीं है, उनसे बिल उमूम में अर्ज कर रहा हूं कि इस मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाइए। जिनके मशाइख हैं आप अपने अपने मशाइख से रिश्ता जोड़ लीजिए, और जो किसी शेख से बैत नहीं है तो जहां आपका दिल लगे, जिसके लिए आपके दिल में एडमिरेशन हो, जिस पर आपको फैज हो कि ये अल्लाह वाला है, ये मेरी आखिरत की फिक्र करेगा, और जिससे आपको कंपैटिबिलिटी हो, तो ऐसे शख्स की मजलिस में जाएं चंद हफ्तों के लिए, और फिर जब इत्मीनान हो कि इसकी मजलिस में बैठकर फिक्र आखिरत पैदा होती है, अल्लाह याद आता है, और इसके साथ मैं डील कर पाऊंगा, कंपैटिबिलिटी है, कम्युनिकेशन रह सकेगा, तो ऐसे शख्स के बैद होकर के अपने इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और अब जो है बिल उमूम सब हजरात से और बिल खुसूस मेरे अहबाब से दरख्वास्त यह है कि इसको मकसद बनाएं, और मकसद बनाकर इन चार कामों को लाजिमी तौर पे करें। नंबर एक, मामूलात की खूब पाबंदी करें जो शेख ने बतलाए हैं और उसमें तरक्की कर दी है, चलते फिरते भी बहुत ज्यादा जिक्र करना है। नंबर दो, बुरी सोहबत और बुरे माहौल से बचना है, अच्छी सोहबत और अच्छे माहौल में हमेशा रहना है, और वक्तन फवक्तन अपने शेख की सोहबत भी इख्तियार करनी है जितनी ज्यादा हो सके। और नंबर तीन, ये जितने भी जाहिरी गुनाह हैं उन सब गुनाहों से बचने का मुजाहदा करना है। ये तीन काम करने से जाहिरी गुनाह से भी नजात मिलेगी, और इन तीन कामों को करने से असर होगा कल्ब पर, तो ये कल्ब के जो बुरे रजाइल हैं वो धीरे धीरे मुजमहिल होंगे, धीरे धीरे मिटेंगे इंशाल्लाह। और चौथा काम क्या करना है कि वक्तन फवक्तन अपने अहवाल बतलाने हैं, अपने दीनी अहवाल, जो शॉर्ट कमिंग्स है वो बतलानी है खास तौर पे, और उसका इलाज ढूंढना है, और जो इलाज बतलाया जाए उस पर अमल करना है। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। कुरान की तिलावत भी अहतमाम से करनी चाहिए, तस्बीहात भी अहतमाम से करनी चाहिए, अज़कार भी एहतिमाम से करना चाहिए, जिक्र भी एहतिमाम से करना चाहिए और मसनून दुआओं का बहुत एहतिमाम होना चाहिए। गुनाहों से खूब बचना है, इसे मकसद बनाना है, और गुनाहों से बचने के लिए बुरी सोहबत से बचना है, बुरे माहौल से बचना है, उन तमाम चीजों से बचना है जो गुनाह तक ले जाए, और उन तमाम चीजों को इख्तियार करना है जो गुनाहों से बचाए। तो गुनाहों से भी बचना है, नेक सोहबत इख्तियार करनी है, बुरी सोहबत से बचना है, अपने शेख के साथ राबते में रहना है, उनकी सोहबत इख्तियार करनी है, उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करानी है, उनके दिल में उतरना है, और दुनिया से शेख के दिल में हम नहीं उतर पाते। शेख के दिल में उतरने का तरीका यह है कि वो जो चीजें सिखाते हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा करें। शेख आखिरत के नुक्ते नजर से सब कुछ देखते हैं और अपने बच्चों की जो है तरबियत की खूब फिक्र करें कि इस्लामी तरबियत हो, अच्छे मकातिब में उनको भेजें, अच्छे असातिदा उनके लिए ढूंढें, और खुद भी निगरानी करें कि तालीम तरबियत ठीक हो रही है या नहीं। उनके साथ वक्त निकालकर हफ्ते में एक दो मरतबा बैठकर उनकी जहन साजी करें, घर में तालीम का रिवाज हो, रोजाना हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो दीनी महफिलों में उलमा हफ्ते में एक मरतबा कम से कम किसी अच्छे आलिम के पास बैठना चाहिए जिसका दर्स सुने, जिससे इल्म में इजाफा होगा। तो ये बहुत सारे काम करने हैं और अल्लाह से खूब दुआ करनी है कि अल्लाह दुनिया में भी आफियत के साथ, आखिरत में भी आफियत के साथ रहें, और अल्लाह से दुआ की। इसलिए तज़किया ये सारे असबाब हैं, तज़किया अल्लाह करते हैं, असल मुज़क्की अल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तकवाहा, ये अल्लाह मेरे दिल में तकवा पैदा कर दे, मेरे नफ्स को मेरे दिल को तकवा अता फरमा दे, वज़क्किहा और मेरे नफ्स का तज़किया कर दे, अंत खैरु मन ज़क्काहा, उन लोगों में से जो नफ्स का तज़किया करते हैं तो सबसे बेहतर तज़किया करने वाला है। और अल्लाह ताला शानहु कुरान में इरशाद फरमाते हैं सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को कि वलौला फ़द्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फ़द्ल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से किसी का भी तज़किया न होता। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुम्हारा जो तज़किया हुआ वो अल्लाह का फ़द्ल और अल्लाह की रहमत है। तुमको सबसे मुबारक सबब मैंने दिया। तो अल्लाह से दुआ भी खूब करनी है कि अल्लाह आप मेरा तज़किया कीजिए, ये अल्लाह आप मुझे सही सोच दीजिए, आप मुझे सही जज्बात दीजिए, जिन कामों से आप राजी हैं उसी के जज्बात दीजिए, उसी की नीयतें और उसी का ख्याल और उसी का वसवसा डालिए, और जो बुरे काम हैं उनसे मुझे बचा लीजिए, शैतानी वसाविस से मुझे बचाइए। अल्लाह ताला शानहु हम सबको तौफीक अता फरमावे, रमज़ानुल मुबारक में जो कुछ हो सका अल्लाह उसे कबूल फरमा लें, और जो कोताहियां हुई और बहुत हुई हैं अल्लाह उनको माफ़ करे, और हमें उन लोगों में शामिल न फरमाए कि जिनके बारे में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई थी कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और उसकी मगफिरत न हुई हो। तो ऐसा न हो ये अल्लाह कि हमारी अब तक मगफिरत न हुई हो और हम इस बद्दुआ में शामिल हो जाए। और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही, अफजलुल मलाइका ने दुआ की और अफजलुल कायनात ने आमीन कही। अल्लाह हमें उसमें शामिल न करें। और ये अल्लाह आगे की जो घड़ियां बाकी रह गई हैं, 5 घंटे तकरीबन बाकी रह गए हैं, उनकी कदरदानी की हमें खूब तौफीक दीजिए, और ये अल्लाह उसके बाद पूरी जिंदगी, ये सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जो नसीहतें की गई हैं अब ये पूरी जिंदगी का लाइहा अमल है हमारा, आज से ये मंशूर है हमारा, आज से ये हमारा एक प्लान है गोया कि इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, एक खुत्ता है हमारे लिए। तो बाद में भी रमजान मुबारक के बाद भी इस सारी मेहनत जारी रहे और रिज्क हलाल का बहुत एहतमाम हो, हराम बिल्कुल ना हो, नमाजों का 5 वक्त की नमाजों का जमात के साथ बहुत एहतमाम हो, और नमाज में भी कोशिश ये कीजिए कि तकबीर उला से 5 मिनट 10 मिनट पहले मस्जिद में आ जाएं, अजान से पहले आ जाएं तो बहुत अच्छा, इसलिए कि वो नमाज जो इंतजार वाली होती है, इंतजार, एक शख्स इंतजार करता है इंतजार। हजरत मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इंतजार वाली नमाज बहुत मजबूत होती है, और इसलिए मजबूत होती है कि एक आदमी बाहिर होता है और घड़ी में देखता है कि अभी 5 मिनट बाकी है, अभी 4 मिनट बाकी है, अभी 3 मिनट बाकी है, अभी 2 मिनट बाकी है, अभी 1 मिनट बाकी है, तो उस वक्त तक वो लोगों के साथ दुनिया के काम में मशगूल है। अब अंदर वो आता है तो वही फिल्म चलता रहेगा दुनिया वाला, और अगर मस्जिद में 10 मिनट पहले आ जाता है, मस्जिद में 10 मिनट पहले, तो नमाज नमाज नमाज, तो दुनिया की कोई बात नहीं है। अब वो सुन्नतें पढ़ेगा, सुन्नतों के बाद दुआ में मशगूल होगा, तो दिल दिमाग में अल्लाह जल्ल जलालहु वामन वालहु बैठ जाएंगे और उसकी नमाज अब पुख्ता होगी। और मस्जिद में नमाज से पहले भी, नमाज के बाद भी ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। जिन लोगों के जिम्मे कजा नमाजें बाकी हैं वो कजा पढ़ लें, और जिन लोगों के जिम्मे कजा नमाजें नहीं हैं उनको चाहिए कि तहज्जुद भी पढ़ें, इशराक भी पढ़ें, चाश्त भी पढ़ें, अवाबीन भी पढ़ें, और तहियतुल वुजू भी पढ़ें और तहियतुल मस्जिद भी पढ़ें। इसलिए कि नमाज से बहुत कुछ मिलता है। कुर्रतु आईनी फिस सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। सजदे में जब बंदा जाता है तो अल्लाह ताला शानो उसे सबसे ज्यादा करीब होता है। जब क्याम में होता है तो अल्लाह ताला से हम कलाम होता है, बातचीत करता है। गुनाह धुलते हैं नमाजों की बरकत से, रिज्क में बरकत होती है नमाजों की बरकत से, परेशानियां दूर होती है दुनियावी भी उखरवी भी, ये सब हादिस में बरकतें होती हैं दुनिया में भी आखिरत में भी। तो नमाजों का बहुत एहतियात, हराम बिल्कुल ना आए घर में, और जुबान पर मुकम्मल कंट्रोल हो, जुबान पर मुकम्मल कंट्रोल। और माली एतबार से अगर किसी का कर्जा हमारे जिम्मे है दे दिया जाए, अगर बाप के माल की मीरास सही तौर पर तकसीम नहीं हुई इनहेरिटेंस, तो सही तकसीम करके सब अहले हक को दे दिया जाए। उलमाए किराम मुफ्तियाने किराम इस सर्विस के लिए हाजिर हैं, जाओ उनके पास और उनसे मसाइल पूछ करके अपने मसाइल हल करो, और किसी जगह शुबहा है तो वो भी ये बेहतर है कि अदा कर दिया जाए मुफ्तियाने किराम से पूछकर। अपने आप को फारिग कर लो, दीन में तरक्की होगी, जिंदगी में बरकत होगी, सुकून मिलेगा और आखिरत की पकड़ से बच जाएंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला शानहु से हुस्ने खातिमा का बार बार सवाल हो, सुई खातिमे से अल्लाह हिफाजत फरमावे। अल्लाह ताला शानहु जो कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की मुझे भी आप सब हजरात को भी और जहां जहां तक ये आवाज पहुंची सबको तौफीक अता फरमावे, और हम सबको अल्लाह ताला शानहु कबूल फरमावे। इस वबा को अल्लाह ताला शानहु जल्दी दूर फरमाए, मस्जिदों को जल्दी से जल्दी आबाद फरमा दे, मदारिस को जल्दी से जल्दी आबाद फरमा दे, खानकाहों को जल्दी से जल्दी आबाद फरमा दे, दावत व तबलीग के काम को जल्दी से जल्दी आबाद कर दे। और इस वबा की वजह से जो भी दीनी और दुनियावी काम मुअत्तल हो चुके हैं अल्लाह ताला शानहु उन सबको दोबारा जारी फरमा दे। और हम अल्लाह से अहद करें कि अल्लाह अब तक बहुत कोताही हुई है, आपने हम पर करम फरमाया कि इस वबा को भेजकर हमें बेदार किया, अब हम पक्का इरादा करते हैं कि अब से इंशाल्लाह आपकी रिजा और आपकी मोहब्बत को हासिल करने की तगोदो करेंगे। इल्म में कमी है तो मेहनत से इल्म हासिल करेंगे, और जहां बातिन की इस्लाह की कमी है तो मेहनत से तज़किया भी कराएंगे, और दूसरों पर भी मेहनत करेंगे उनको दीन की तरफ लाने के लिए। अल्लाह ताला शानो हम सबको कबूल फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। दुआ तो हो गई है मगर मुख्तसर दुआ कर। اللهم لك الحمد كما انت اهله اللهم لك الحمد كما انت اهله اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعامت الوجوه للحي القيوم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم اذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من المغفورين. اللهم اجعلنا من المغفورين. اللهم اجعلنا من المغفورين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقابك وبك منك جل وجهك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضه. توفنا مسلمين وألهقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. إلهنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. يا أرحم الراحمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین رمضان المبارک میں تیری رحمتیں موسلادھر بارش کی طرح برستی ہے. اتنی برستی ہے اتنی برستی ہے کہ ہر شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے الہ العالمین تیرے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے. الہ العالمین ہمیں اس وعید میں آنے سے بچا لے. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی ہمارے اہل و عیال کی بھائیوں کی بہنوں کی رشتہ داروں کی محبین محسنین کی الہ العالمین تعلق رکھنے والوں کی الہ العالمین توقع اور امید رکھنے والوں کی الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما الہ العالمین اس بد دعا کا کسی کو بھی مورد مت بنا. الہ العالمین تیرے بندوں میں سے کسی کو بھی اس بد دعا کا مورد مت بنا. الہ العالمین رمضان میں ایسا کچھ نہیں کر سکے جس کے سہارے سے کہا جا سکے کہ ہماری مغفرت ہو گئی ہوگی. سستی غفلت میں رمضان گزرتا چلا گیا اور الہ العالمین جو کچھ ہوا وہ بھی کھوکھلا. الہ العالمین نہ خشوع نہ خضوع نہ سنت طریقے کے مطابق نہ خلوص الہ العالمین, دھیان ادھر ادھر, الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین, بس تو محض اپنے لطف و کرم سے, رمضان المبارک کی برکتوں سے, اس آخری عشرے کی آخری ساعتوں کی الہ العالمین برکتوں سے ہماری مغفرت فرما, ہماری مغفرت, ہماری مغفرت فرما. اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما انت ترحمونا فرحمنا برحمت تغنین بها الرحمت من سوا. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, ہم سب کو دنیاوی اخروی عافیت عطا فرما دے. اے اللہ, رمضان المبارک کی جو برکات ہیں ہم سب کو الہ العالمین و برکت نصیب فرما دے. الہ العالمین, اس رمضان میں, اس سے پہلے والے سب رمضانوں میں تو نے اپنے برگزیدہ نیک متقی پرہیزگار بندوں کو اپنی بارگاہ سے جو جو بھلائیاں, جو جو خیرات, جو جو برکات عطا کی ہیں, الہ العالمین وہ ساری ہمیں بھی عطا فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما. الہ العالمین, ہم میں سے جس جس کی جو جو حاجت ہے الہ العالمین وہ ساری حاجتیں پوری فرما دے. دنیاوی حاجتیں, اخروی حاجتیں, بیماریوں سے شفا عطا فرما, سب کو صحیح سوچ عطا فرما. الہ العالمین, صحیح مقصد نصیب فرما, مفید کاموں کے لیے الہ العالمین ہماری صلاحیتیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, لغو گناہ سے ہماری حفاظت فرما, اور الہ العالمین بیکار اور مفضول اور غیر مفید کاموں میں ہماری صلاحیتیں لگنے سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, جو بھلائی کی باتیں ہم بولتے ہیں, جو بھلائی کی باتیں ہم دوسروں سے سنتے ہیں, الہ العالمین ان کی طرف کان دھرنے والا بنا دے. اور الہ العالمین, الہ العالمین ان کی طرف کان دھر کر, دلوں کے کانوں سے سن کر, اسے قبول کر کے ان پر عمل کرنے والا بنا دے. شیطان اور نفس کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین, جن گنے چنے افراد کو پوری دنیا میں آپ نے اعتکاف کی سعادت سے اس سال نوازا ہے, الہ العالمین, الہ العالمین ان کی جھولیوں کو بھر دیجئے. اور الہ العالمین, جن حضرات کا اعتکاف کا ارادہ تھا, نیتیں تھیں, لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے, الہ العالمین انہیں بھی, اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو جو برکتیں ملتی ہیں وہ ساری برکتیں انہیں بھی نصیب کیجیے. اور ان دونوں طبقوں کی برکت سے الہ العالمین پوری امت کو بھی برکتوں سے مالا مال کر دیجیے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, کورونا وائرس تیری طرف سے جو بھی مصیبت آتی ہے الہ العالمین, اس کے کچھ نہ کچھ منافع بھی ہوتے ہیں. اس سال الہ العالمین بہت سارے گھروں میں قرآن ختم ہوا ہے. الہ العالمین ان سب کی تراویوں کو اور سب کے ختمات قرآن کو قبول فرما دے. اور الہ العالمین تمام حافظ صاحبان کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے کہ انہوں نے ہماری ہمیں تراوی پڑھائی اور ہمیں قرآن سننے کا موقع عطا فرمایا. الہ العالمین, الہ العالمین اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی, جن جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں ان حالات میں, الہ العالمین ان سب کو جزائے خیر عطا فرما, ان سب کو جزائے خیر عطا فرما, ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. ان کو بھلائی ہے, ان کو اچھائی عطا فرما. الہ العالمین اعتکاف والوں کی راحت کے خاطر الہ العالمین انہوں نے اپنے سارے معمولات کو آگے پیچھے کر کے, اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے اپنے آپ کو وقف رکھا. الہ العالمین جہاں جہاں لوگ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جن جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں ان حالات میں, الہ العالمین سب جزائے خیر ہے. یا اللہ, جو اعتکاف والوں کو ملا ہے الہ العالمین وہی ان کو عطا فرما, ان کی نسلوں کو عطا فرما. یا رب الرحمین ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما, تزکیہ کے لیے قبول فرما لے, تزکیہ کے لیے قبول فرما لے, ہمیں تزکیہ کی فکر عطا فرما. الہ العالمین تزکیہ کی خوب فکر نصیب فرما, پوری امت کو تزکیہ کی فکر نصیب فرما. الہ العالمین اس وبا کو روئے زمین سے اٹھا لے, اس وبا کو روئے زمین سے اٹھا لے. ہم سب کی حفاظت فرما, ایک ایک فرد کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو دین کے خدام ہیں, علماء مشائخ, اور الہ العالمین مدرسین معلمین, اور دعات اور الہ العالمین مبلغین اور مصنفین اور مفتیان کرام الہ العالمین جن پر دین کا مدار ہے ان میں سے ہر ایک کو اس سے محفوظ فرما, اور الہ العالمین مساجد کو, مدارس کو, خانقاہوں کو اور دعوت و تبلیغ کے کاموں کو, جمعیت کے کاموں کو الہ العالمین سب کو جلد از جلد آباد فرما دے. یہ ارحم الراحمین پوری زندگی کو روٹین پر لیا, تمام ممالک کو الہ العالمین مالی استحکام نصیب فرما, غربت سے سب کی حفاظت فرما. یہ ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ میں سے جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ, الہ العالمین دینداری کے ساتھ, خدمت دین کے ساتھ, تیری عبادت کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ برکت عطا فرما. ان کو کسی کا محتاج نہ بنا, ان کو کسی پر بوجھ نہ بنا. اور الہ العالمین ان کو آسانی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین جو انتقال کر چکے ہیں ان کو غریق رحمت فرما, ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یہ ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ میں سے جو زندہ ہیں ہمیں ان کی دعاؤں کا, ان کی توجہات کا مرکز بنا. الہ العالمین ہماری طرف سے انہیں تکلیف پہنچنے سے ان کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے, بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہماری پوری زندگی کی مانگی ہوئی تمام خیرات نصیب فرما. الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. تمام جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین شیطان اور نفس کے مقاعد سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں قبول فرما لے, قبول فرما لے, قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا ارحم الراحمين مرحومين کی مغفرت فرما, مرحومين کی مغفرت فرما, ایک ایک کی مغفرت فرما دے, ایک ایک کی مغفرت فرما دے, اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یہ اللہ تو لاکھوں انسانوں کی مغفرت کرتا ہے رمضان کے مہینے میں. یہ اللہ ہر مرحوم کی مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے, مغفرت فرمائے. الہ العالمین اسلامک دعوی اکیڈمی کے جتنے معاونین ہیں جو زندہ ہیں, انتقال کر چکے ہیں, سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. الہ العالمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے, پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, مصیبت زدہ ہے عافیت عطا فرمائے, موت کے قریب ہے حسن خاتمہ نصیب فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.